में रखना। कर्म की गुह्य गति जो भगवान ने चौथे अध्याय में हमें बताई, कर्म कर्म विकर्म, और उस परमात्मा का सत्य परिचय जो हमने देखा, और फिर पांचवें छठे अध्याय में ध्यान योग की बातें कि कैसे हमें अपने मन को उस परमात्मा में एकाग्र करना है। साथ ही साथ योग अभ्यास कैसे करना है, बैठक कैसी होनी चाहिए, और उस बैठक में भी जो संयम की बातें बताई, आहार विहार, कर्मों की उपयुक्त चेष्टता और संतुलित शयन जागरण, कितना एक दिन में योग करना चाहिए, बाकी समय कैसे कर्म योगी बनना है, संन्यास कोई चीज वस्तुओं का नहीं करना है, कर्तव्य कर्मों का संन्यास नहीं करना है, लेकिन बुरी वृत्तियों का संन्यास करते हुए मन को ईश्वर में लगाना है। योग अभ्यास करते समय अनुभव क्या होता है और उस अनुभव को और गहराई से कैसे अनुभव करना है, वो विधि भी बताई। साथ ही साथ मन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बार बार चला जाता है, कोई बात नहीं, वापस उसको ले आइए, वापस लगाइए, और अगर अंतिम समय पुरुषार्थी का मन विचलित भी हो जाए तो भी भगवान की ये गारंटी है कि वो कभी दुर्गति को तो प्राप्त ही नहीं करेगा, लेकिन पुनर्जन्म प्राप्त करके उस दैवी संस्कारों को जागृत करते हुए वो पुनः उस मार्ग पर अग्रसर होता है और श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त करता है। अभी सातवां अध्याय देखेंगे, ज्ञान विज्ञान योग, जिसमें परमात्मा सर्व में श्रेष्ठ परम पुरुष परम सत्य है, महात्मा जन भी श्रद्धा पूर्वक उनकी शरण लेते हैं, लेकिन पतित जन पूजा की अन्य वस्तुओं के तरफ अपने मन को मोड़ लेते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर सातवें श्लोक तक विज्ञान सहित ज्ञान का विषय लिया है, आठवें श्लोक से लेकर बारहवें श्लोक तक संपूर्ण पदार्थों के कारण रूप से परमात्मा की श्रेष्ठता का कथन किया गया है, तेरहवें श्लोक से लेकर उन्नीसवें श्लोक तक आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा, बीसवें श्लोक से लेकर तेईसवें श्लोक तक अन्य देवताओं की उपासना का विषय, और चौबीसवें श्लोक से लेकर तीसवें श्लोक तक भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा की गई है। और इस तरह भगवान अपने विषय में पुनः चौथे अध्याय के बाद ध्यान योग आदि की बातें सुनी हमने, लेकिन आप पुनः अर्जुन का ध्यान अपने स्वरूप के विषय में खिंचवाते हैं और भगवान कहते कि हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए हजारों में कोई विरला प्रयत्न करता है और उसमें भी कोई विरला जान पाता है, जो अनन्य भाव से मेरे आश्रित होकर मेरे साथ योग लगाता है वह सरलता से मेरे संपूर्ण रूप को जान लेता और माया को भी पार कर जाता है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला ही मेरे यथार्थ स्वरूप को जान पाता है। अब अगर श्री कृष्ण को देखे तो श्री कृष्ण को आज दुनिया में कौन नहीं जानता। सारे संसार की आत्माएं श्री कृष्ण को जानते ही है, चाहे हिंदू धर्म वाले हो और धर्म वाले हो। लेकिन जब ये महावाक्य उच्चारण किया तब भी पुनः ये स्पष्ट होता है कि उसके माध्यम से बोलने वाली शक्ति कोई और है, जो अर्जुन को भी ये संकेत दे रहा है कि तुमने भी अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। और इसीलिए उसको जनरलाइज कर लिया कि हजारों में कोई विरला प्रयत्न करता है और उसमें कोई विरला ही मुझे जान पाता है और मेरी शरण को ग्रहण करता है मेरे संपूर्ण रूप को जानने के बाद। भावार्थ ये कि परमात्मा जब इस संसार में अवतरित होते हैं उस समय, क्योंकि इतने धर्म ग्लानी का समय था, मनुष्य इतना अपने आप में व्यस्त था कि उसको ईश्वर को जानने का कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि कहीं न कहीं वो इस अहम भाव में अज्ञानतावश हो जाता है और स्वयं को ही ईश्वर का स्वरूप समझने लगता है, मैं ही ईश्वर हूं, इस भाव में आ जाता है। और तब भगवान ने कहा कि कोटों में कोई ही जान पाते हैं। अब आज अगर इस धर्म ग्लानी के समय में भगवान इस संसार में अवतरित हो जाए तो ये तो स्पष्ट है कि श्री कृष्ण के रूप में तो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर श्री कृष्ण के रूप में आए और उसमें अगर अवतरित हो तो भी मनुष्य उनके पीछे ऐसे लग जाएंगे जो उसको अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना का कार्य करने नहीं देंगे। इसीलिए यह अवश्य है कि अति साधारण रूप में आते हैं, जिस कारण भगवान ने कहा मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं पाते हैं। मूढ़मती माना जो अपने अहंकार के नशे में है वो मुझे नहीं पहचान सकते हैं और इसलिए वो मेरी शरण को ग्रहण नहीं करते। वही बात याद आ जाती है कि जैसे वो एक बच्चा था, भेड़ बकरियां चराने जाता था, रोज चिल्लाता था शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया, सारा गांव दौड़ जाता था और फिर वो हंसता था, शेर का आवाहन करता रहा, लेकिन एक दिन सचमुच शेर आ गया। उस समय पुकारा, कोई नहीं आए, क्योंकि सोचा हर बार की तरह यही होगा। ऐसे ही जब आज दुनिया में अनेक भगवान हो जाते हैं तब रियल भगवान भी अवतरित हो जाता है, लेकिन उस समय मनुष्य क्या समझते हैं, अरे ये भी वही है वही है। और इसलिए जब सत्य भगवान से जो प्राप्ति करनी चाहिए वो प्राप्ति कर नहीं पाते, क्योंकि अपने ही अहंकार के नशे में है। तब कोटों में कोई कोई में भी कोई विरला उसको जान पाता, उसकी शरण ग्रहण कर पाता और उसके उससे प्राप्ति कर पाता है। तो इसीलिए यहां कहीं न कहीं अर्जुन को भी ये संकेत मिल रहा है कि तुमने भी अभी तक मुझे जाना नहीं है। फिर भगवान अपनी वास्तविकता को और स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि ये जो संसार में खेल है वो प्रकृति पुरुष और परम पुरुष से ये संसार चक्र चलता है, उसमें सर्वश्रेष्ठ मैं परम पुरुष हूं, यहां फर्स्ट पर्सन में आ गया और कहा मैं परम पुरुष हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज हूं, आई एम द सीड। श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते कि आई एम द सीड, क्योंकि वो तो पत्ता है, इसीलिए श्री कृष्ण को पत्ते पर दिखाते हैं, पीपल के पत्ते पर संसार में आया, वो फर्स्ट पत्ता है इस सीड के द्वारा निकला हुआ, परमात्मा बीज है, श्री कृष्ण पहला पत्ता है। जो धर्म के विरुद्ध नहीं है उन बुद्धिमानों की बुद्धि हो, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, सात्विक राजसिक तामसिक इन गुणों के प्रभाव में मैं नहीं आता हूं। श्री कृष्ण सात्विक प्रभाव में है, लेकिन परमात्मा ये तीनों प्रभाव से ऊपर है। तब फिर आगे भगवान कहते हैं, दूसरे मनुष्य क्यों भगवान को नहीं पहचान पाते हैं, तो भगवान कहते हैं माया द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण हुआ है और जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, वे मनुष्य में अधम दुष्ट कर्म करने वाले मूढ़मती परमात्मा की शरण को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इतना आज की दुनिया में आप देख सकते हैं, साक्षी हो जाओ, डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाओ और देखो, तो आपको समझ में आएगा कि मनुष्य माया में कितना उलझा हुआ है, अनेक प्रकार की माया के परवश है और उस माया ने उसकी बुद्धि का अपहरण कर लिया। इसलिए कई बार वो लोग कहते हैं हमारा आध्यात्मिकता से कोई वास्ता नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, जबकि आध्यात्मिकता की आवश्यकता किसको न हो, आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं है हमें जीवन में, लेकिन फिर भी भटक तो रहे हैं। वो बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति बाहर से आया और गाड़ी पार्क किया, परिवार वाले कहीं घूमने गए थे, वो अकेला था, तो अपने काम पर से जब रात को आया, गाड़ी पार्क की और जैसे ही घर में जाने के लिए उतरा कि उसके घर की चाबी गिर गई, बालू थी, तो अब घर में कैसे जाए चाबी के बिना, तो ढूंढने लगा उस बालू में, ढूंढ रहा था कि कुछ लड़के वहां से गुजर रहे थे, जब देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति ढूंढ रहा है कुछ बालू में, तो आवाज लगाई, चाचा क्या ढूंढ रहे हो, तो चाचा ने कहा रे मेरी चाबी गिर गई, अब घर में कैसे जाऊं। वो लड़कों को दया आ गई, चलो हम भी मदद करते हैं, सब लोग बालू में चाबी ढूंढने लगे हैं। आधा पौना घंटा जो आता था उस खोज में लग जाता था कि भाई चाचा नहीं तो सारी रात बाहर कैसे बैठा रहेगा, चलो ढूंढने में मदद करो। 15-20 लोग हो गए ढूंढते रहे, आधा पौना घंटा जब बीत गया तो एक लड़के ने पूछ लिया, चाचा आपको बराबर मालूम है यहीं गिरी है, चाचा ने कहा नहीं यहां नहीं, वो गाड़ी पार्क किया ना वहां गिरी है, तो कहा जब वहां गिरी है तो यहां क्या कर रहे, तो कहा वहां अंधेरा है ना, यहां रोशनी है स्ट्रीट लाइट की, कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। जीवन में सुख शांति चाहिए, आनंद चाहिए, गायब हुए कहीं और, ढूंढ रहे हैं कहीं और, क्यों, क्योंकि अंदर अंधेरा है बाहर उजाला है, इसलिए भौतिक उजाले में ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसको ही कहा जाता कि माया के द्वारा बुद्धि का अपहरण हो गया। और जब ऐसे माया के द्वारा बुद्धि का अपहरण हो गया, जहां गुम हुई ही नहीं है वहां ढूंढने से इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और कई लोग अपना सारा जीवन लगा देते हैं फिर भी ढूंढ नहीं पाते हैं। अधम दुष्ट कर्म करने वाले मूढ़मती, ये समझाने पर भी वो अपने अहंकार के नशे में है, जो कहते हैं हमको आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए वो परमात्मा की शरण को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तब अर्जुन का प्रश्न है हमारी तरह ही कि फिर परमात्मा की शरण को कौन ग्रहण करता है, कौन ग्रहण करता है? तो भगवान कहते हैं चार प्रकार के पुण्यात्मा परमात्मा को दिल से याद करते हैं, उसकी शरण ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। कौन कौन है? तो कहा सबसे पहले आर्त, जो विपदा ग्रस्त है, बीमार है, दिल से भगवान को याद करते हैं, प्रभु मेरा दुख हरो। उस वक्त वो जैसे बुद्धि से उस परमात्मा की शरण में जाने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग अर्थार्थी, बिजनेस करने वाले, रोज सबसे पहले दुकान खोलेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, लाभ की इच्छा रखने वाले कि आज बहुत अच्छा कोई ग्राहक आ जाए और आज बहुत अच्छी कमाई कर लूं मैं। तीसरे प्रकार के लोग हैं जिज्ञासु, जो ज्ञान की जिज्ञासा रखते हैं, वो भी बहुत प्यार से ईश्वर को याद करते हैं। और चौथे प्रकार के लोग हैं ज्ञानी, जो आध्यात्म को यथार्थ जानने का प्रयत्न करना चाहते हैं, आध्यात्म क्या है उसको समझना चाहते हैं। ये चार प्रकार के पुण्य आत्मा है जो ईश्वर की शरण को ग्रहण करता है और उसकी शरण में सबसे पहले जाकर के अपने दिन को आरंभ करता है। बाकी सबका हाल क्या होता है? तो भगवान कहते हैं निसंदेह सब श्रेष्ठ भाव वाले ही है, परंतु उसमें भी जो परम ज्ञानी और परमात्मा प्यार में समाया हुआ है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कितनी कॉन्फिडेंटली ये बात कहते हैं, मैं उनको प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है, उसे मैं अपने समान मानता हूं, क्योंकि वह निश्चय बुद्धि होकर मेरी मत में स्थित रहता है, जो मैं कहता हूं उसको फॉलो करता है, उसको आत्मसात करता है। वह बहुत जन्म के अंतिम जन्म में मेरी शरण में आ जाते हैं। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, हर कोई नहीं आ सकते हैं, हर कोई उसकी शरण में नहीं जा सकते हैं। बहुत दुर्लभ है ऐसे महात्मा जो इतना ईश्वर से प्यार करते हैं और भगवान भी उसको इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि अपने समान उसको मानते हैं। आप सोचो ये इज्जत ईश्वर द्वारा प्राप्त करना कितनी सौभाग्य की बात होगी, कि जब ईश्वर से जो प्यार करता है ईश्वर भी उनको इतना ही प्यार करता है। एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक लड़का था, सारी गायों को ले जाता था गैया को घास खिलाने के लिए, और एक खुला मैदान आता था तो छोड़ देता था। सारी गायें घास खा रही होती थी और वो निश्चिंत होकर के कहीं पेड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे बैठता था। सारा दिन अकेला होता था, क्या करता है? तो मन ही मन भगवान से बातें करता रहता था। तो एक दिन जब वो गायों को लेकर के गया, गायों को खुले में छोड़ दिया और फिर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, गायों को देखते हुए उसके मन में विचार आया, जैसे मैंने ये गायों को छोड़ दिया, हर एक अपना अपना घास खा रही है, अपना कर्म कर रही है, और मैं यहां साक्षी होकर के बैठा हूं, उनको देख रहा हूं। जैसे ईश्वर ने भी हमें इस संसार में छोड़ दिया है, हर कोई अपना अपना कर्म कर रहा है, अब वो भी मेरी तरह कहीं बैठा ही होगा, देख रहा होगा। तो मन ही मन भगवान से बातें करता है और कहता है, हे प्रभु, तू भी कहीं अकेला बैठा होगा, मैं भी यहां अकेला बैठा हूं, अब मुझे तो पता नहीं तू कहां है, लेकिन तुझे तो पता है ना मैं यहां हूं, क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए आ जाए, बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला अकेला बड़बड़ा रहा था। उतने में वहां से पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी ने देखा कि ये लड़का अकेला अकेला बड़बड़ा रहा है। पूछा, ये लड़का किससे बात कर रहा है? लड़के ने कहा, किसी से नहीं। अरे तू बड़बड़ा रहा है, किससे बात कर रहा है? लड़के ने कहा, बस भगवान से बातें कर रहा था। पंडित जी ने कहा, अच्छा, हमें भी पता चले तुम क्या बात कर रहा था। लड़के ने बड़े निर्दोष भाव से पंडित जी के आगे बात कह दी कि बस उसको कह रहा था, तू भी कहीं अकेला बैठा होगा, मैं भी यहां अकेला हूं, तो क्यों नहीं थोड़ी देर के लिए आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया, अरे ईश्वर कौन है, तुम जानता भी है? वो कोई टाइम पास करने के लिए है क्या? वो कोई गपशप करने के लिए है क्या? ये कोई तरीका है भगवान को याद करने का? बड़ा गुस्सा करने लगे, ये कोई सभ्यता नहीं है भगवान से बात करने की, पाप कर रहा है तू। वो लड़के ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहा, पंडित जी, मुझे तो और कुछ आता नहीं, मैं तो रोज ऐसी बातें करता हूं। अरे पाप लगेगा तुझे ऐसी बातें करता है तो? तो लड़के ने कहा, पंडित जी, क्या आप मुझे सिखा सकते हो कि भगवान से कैसे बात करना चाहिए, वो सभ्यता सिखा सकते हो? पंडित जी ने कहा, अच्छा बैठो, सिखाता हूं। और संस्कृत का कोई श्लोक बोल गए। अब वो लड़का अनपढ़, उसको संस्कृत क्या मालूम। पंडित जी ने एक एक शब्द रटाना चालू किया और 2 घंटे लगे पूरा श्लोक रटाने, सारा श्लोक रटा दिया। और पंडित जी ने कहा, यह सभ्यता है भगवान को याद करने की, रोज ऐसे ही याद करना। लड़के ने कहा, बिल्कुल गलती नहीं करूंगा, रोज ऐसे ही याद करूंगा। और शुरू हो गया। पंडित जी वहां से चले, मंदिर पहुंचे और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मैंने इतना अच्छा काम किया, एक अनपढ़ बालक को आपको याद करने की सभ्यता सिखाई। उतने में आकाशवाणी हुई, तुमने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? क्यों प्रभु? तो कहा, वो लड़का रोज जंगल में आता था, कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात कर रहा, मैं रोज उसका इंतजार करता रहता था कि आज वो आकर मुझसे क्या बात करेगा। दिल से बातें करता था, लेकिन आज से जो तो उसको पढ़ा के आया है ना, जो रटा के आया है, वही रटा रटाया रोज बोलता रहेगा बोलता रहेगा, जिसको सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज से तूने एक बच्चे को मेरे से दूर कर दिया, ये अच्छा नहीं किया। कहीं हम भी रोज वही रटी रटाई प्रार्थना तो नहीं बोल रहे हैं? अगर वही कर रहे हैं तो उसको सुनने में भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए दुनिया में भी कहा जाता है भगवान भावों का भूखा है। भाव से याद करो, दिल से याद करो, जो मन में आए वो उससे बातें करो, लेकिन जब दिल से आप उसको याद करेंगे, प्यार से उसको याद करेंगे, तो वो भी आपको उतना ही प्यार करेगा। इसलिए कहा वो मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसको अत्यंत प्रिय हूं, और उसको भगवान अपने समान मानता है, इतनी इज्जत देता है भगवान। तो क्या पसंद है, रोज वही रटी रटाई प्रार्थना बोलना या दिल से उसको याद करना, प्यार करना, क्या चाहते हैं? ये बात भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तू भी दिल से याद किया कर, प्यार से याद किया कर, क्योंकि तू मुझे प्रिय है और मैं तुझे प्रिय हूं। और बाकी सबका क्या हाल है? तो कहा जिनकी बुद्धि इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। भारत में जो 33 कोटि देवताएं हैं, उनके भी मंदिर बने हुए हैं, और कौन जाता है वहां? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उस इच्छा पूर्ति के लिए वो देवताओं के पास जाते, वो परमात्मा के पास नहीं जाते। तो दिव्य आत्मा और परमात्मा दोनों में अंतर है। परमात्मा पिता है, दिव्य आत्माएं वो आत्माएं हैं, वो पिता है, वो बच्चे हैं। अब भाइयों को याद करें तो प्राप्ति होगी, या पिता को याद करने में, प्यार करने में प्राप्ति होगी? विवेक क्या कहता है? दिव्य आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा, ये सब आत्माएं हैं। पाप आत्माएं, पुण्य आत्माएं, ये सब आत्माएं हैं। तो दिव्य आत्माओं से प्राप्ति होगी या परमात्मा से प्राप्ति होगी? पिता से होगी या भाइयों से होगी? वर्षा तो पिता से ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिनकी बुद्धि इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे अपनी इच्छा पूर्तियों के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं, परमात्मा की शरण में नहीं। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा का विधि विधान का पालन करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। किंतु, समझने की बात है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारी प्राप्ति मेरे द्वारा ही है, वो देवात्माएं नहीं करा रही है। कराने वाला कौन है? परमात्मा ही है। अल्पज्ञ बुद्धि वाले, अल्पज्ञ बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं तो प्राप्त होने वाले फल भी सीमित और क्षणिक होते हैं। कितना गुह्य राज भगवान स्पष्ट करते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा का विधि विधान बना करके पूजा की रसम निभाते हैं। भावार्थ ये कि सात्विक स्वभाव के जो व्यक्ति है, उसका पूजा का विधि विधान क्या होता है? नहा धो करके, फ्रेश हो करके, फिर भगवान के मंदिर को भी साफ स्वच्छ करके फिर पूजा करते हैं। लेकिन राजसिक प्रकृति वाले लोग क्या कहते हैं? अरे भगवान तन थोड़ी देखता है, वो तो मन देखता है। नाए ना नाए चले गए मंदिर में, भगवान की को प्रार्थना कर लिया, उसकी शरण में जाकर के कुछ इच्छा पूर्ति के लिए मांग लिया और आ गए। ये राजसिक प्रकृति वाले लोग हैं। और तामसिक प्रकृति के लोगों का पूजा का विधि विधान क्या होता है? आज की दुनिया में आप लोग देखते हैं कई लोग साइकिल पर स्कूटर पर जाते रास्ते से ही देखते हैं। एक बार बंबई में मेरा कहीं जाना हुआ था, तो अब जो लोग मुझे पिकअप करने वाले थे तो कहा कि वहां एक हनुमान जी का मंदिर है, आप वहां खड़े रहना, हम आपको वहां से पिकअप कर लेंगे। बहुत साल पहले की बात है। तो जब उन्होंने कहा हनुमान जी के मंदिर के पास खड़े रहना, मैं वहां खड़ी थी। अलग अलग प्रकार के लोग आते थे जाते थे, पूजा करते थे, देखकर बड़ा हंसी भी आ रही थी, देख भी रही थी साक्षी होकर के कि कैसे कैसे लोग आते हैं हनुमान जी को याद करते हैं। उतने में देखा कि कुछ दो चार लड़के आए साइकिल पर और बाहर खड़ा किया साइकिल दो मिनट और बाहर से कहा हाय हनु और चल दिए। मैंने कहा वाह। हाँ, आज की दुनिया का तामसिक प्रकृति के लोग ये तरीका है, हाय हनु और चल देते हैं। अब अपने आप को देखो, सात्विक प्रकृति से हम पूजा करते हैं, राजसिक प्रकृति से करते हैं या तामसिक प्रकृति से करते हैं। इसीलिए कहा कि वो देवताओं की शरण में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं, लेकिन अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव से पूजा का विधि विधान बना लेते हैं और उसी अनुसार पूजा करते हैं। लेकिन जो प्राप्ति होती है वो देवताएं नहीं करा रहे हैं, कराने वाला परमात्मा है। लेकिन जब देवताओं के माध्यम से उसको याद किया, क्योंकि ज्ञान नहीं है परमात्मा का, परिचय ही नहीं है, तो इसलिए देवताओं के रूप में ईश्वर को याद किया, इसलिए प्राप्ति कराने वाला ईश्वर है। लेकिन वो प्राप्ति भी कैसी होती है? तो क्षणिक और सीमित, लेकिन उसमें वो खुश हो जाते हैं। उनको परमानेंट प्राप्ति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टेम्पररी भी मिल तो गई ना। इसीलिए कई लोग देखते हैं सौदाबाजी करते, ईश्वर को याद करते समय, हे प्रभु इस एग्जाम में मैं पास हो जाऊं, ये इंटरव्यू में पास हो जाऊं तो मैं दो नारियल चढ़ा दूंगा या पांच नारियल चढ़ा दूंगा। बार्गेनिंग हो गई ना ये तो कोई बार्गेनिंग कर रहा है ईश्वर के साथ। अब भगवान को चार नारियल से क्या मतलब आया मेरे को ये बताओ, या दो नारियल से क्या करेगा वो? लेकिन फिर भी दयालु है ना, कर देता है। लेकिन सीमित और क्षणिक होती है, इसलिए लोग जाते रहते हैं। अगर ये प्राप्ति भी ईश्वर न कराए ना, तो शायद घोर अधर्म हो जाए, इसीलिए भगवान कराते हैं। लेकिन स्पष्ट कह दिया कि जो डायरेक्ट मेरी शरण में आते उसको जो प्राप्ति है, और जो वाया होकर के आते हैं। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक भिखारी था, रोज राजा के द्वार पर जाकर भीख मांगता था। राजा का भी नियम था कि मुझे कुछ न कुछ देना जरूर है, जो आए खाली हाथ नहीं जाए, कुछ न कुछ देता रहता था। एक दिन भिखारी ने सोचा ये राजा लाता कहां से है, उस सोर्स को अगर मैं भी जान लूं तो मुझे भीख मांगनी ही ना पड़े। ये सोचकर एक दिन वो सुबह सुबह 6 बजे में पहुंच गया, द्वारपाल से पूछा हे द्वारपाल तुम मुझे ये बताओ कि इस वक्त राजा कहाँ होंगे और क्या करते होंगे। द्वारपाल ने कहा राजा तो मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। सोचा वहीं कोई स्रोत होगा, जाना चाहिए। कहा मैं जा सकता हूँ? कहा जरूर जा सकते, लेकिन पीछे बैठना, आगे नहीं जाना। कहा मुझे आगे कोई काम भी नहीं है, मैं पीछे ही बैठूंगा। वो पीछे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी झोली भर तू रखना ताकि मैं अनेकों की झोली भर सकूं। जैसे ही भिखारी ने ये बात सुनी, उठ के बाहर आ गया। द्वारपाल ने पूछा बड़ा जल्दी बाहर आ गया, क्या बात है? अरे आज पता चले ये राजा भी भिखारी है। वो भगवान से मांगते हैं, भगवान उसकी झोली इतनी भरता है, वो हमारी झोली तो इतनी भरता है, तो मैं भी डायरेक्ट भगवान से ना मांगू। चलते चलते भिखारी के मन में विचार चला कि राजा पूजा कर रहे थे हनुमान जी की, इसका मतलब हनुमान जी ने राजा की झोली भरी, राजा ने हमारी झोली भरी। फिर विचार आया, हनुमान जी की झोली किसने भरी? तो कहा वो तो श्री राम भक्त थे। फिर विचार आया, श्री राम की झोली किसने भरी? तो कहा उसने तो महादेव की पूजा की थी। तो भिखारी सोच में पड़ गया कि इसका मतलब महादेव के बहुत सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा श्री राम को मिला होगा। श्री राम के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा हनुमान जी को मिला होगा। हनुमान जी के भी इतने सारे भक्त, उसमें से एक हिस्सा राजा को मिला होगा। राजा को भी इतने सारे को देना पड़ता, उसमें से एक हिस्सा मेरे पास आया। तो भिखारी सोच में पड़ गया, ये वाया वाया में सब कम हो रहा है, क्यों ना मैं डायरेक्ट कनेक्शन करूं भोलेनाथ के साथ ही। मेरा भाव तो आप समझ ही गए होंगे, कहीं हम भी वाया वाया में तो नहीं अटके हुए हैं। तो आज के बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे? अरे डायरेक्ट कनेक्शन करो ना, जो भगवान ने कह दिया। इनडायरेक्ट कनेक्शन में प्राप्ति बहुत सीमित और क्षणिक है, तो डायरेक्ट जाओ, प्रॉब्लम क्या है? अब तक परिचय ही नहीं था, अब परिचय तो प्राप्त हो गया। तो इसलिए एक है डायरेक्ट उसकी शरण ग्रहण करना, एक है इनडायरेक्ट में जाना। प्राप्तियों में भी बहुत बड़ा अंतर है, यह भी गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया। और फिर अर्जुन पुनः ये बात जैसे चौथे अध्याय में पूछी थी कि परमात्मा को मनुष्य क्यों नहीं जान पाते हैं, क्यों नहीं जान पाते हैं, क्यों देवताओं के पास जा रहे हैं? तब भगवान कहते हैं संसार के संपूर्ण प्राणी इच्छाओं और द्वेष अर्थात राग द्वेषादि द्वंद से उत्पन्न मोह से ग्रस्त है, इसीलिए वे मुझे नहीं जान पाते हैं। और बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त पुरुष को व्यक्त भाव को प्राप्त किया हुआ मानते हैं, वे मुझ अजन्मा अविनाशी सर्वोच्च को नहीं जानते, क्योंकि मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं इनके भी श्री कृष्ण के भी इनके भी तीनों कालों को भूत वर्तमान भविष्य को जानता हूं, इनके भी तीनों कालों को जानता हूं। इसीलिए भगवान कहते हैं बुद्धिहीन मनुष्य जो इतना मोह के अंदर ग्रस्त है वो परमात्मा को कैसे जान पाएंगे। अव्यक्त पुरुष जिसको अपना व्यक्त स्वरूप नहीं है, जो प्रकाश पुंज है उसको व्यक्त भाव, यहां कहीं ना कहीं अर्जुन को भी सिग्नल दिया गया है कि तू भी मुझ अव्यक्त को व्यक्त स्वरूप में देख रहा है, श्री कृष्ण के रूप में देख रहा है। बाकी मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, सर्वोच्च हूं। मनुष्य तो नहीं जानते क्योंकि मैं उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, लेकिन जिसके सामने प्रत्यक्ष हुआ हूं वो भी कहां जान पाते हैं। भावार्थ ये क्या हम सभी के सामने जब आज ये गीता के माध्यम से ये बात स्पष्ट हुई, उसके बाद हम सब क्या करेंगे? क्या फिर भी उस परमात्मा की शरण को डायरेक्ट ग्रहण करेंगे, उसको समझेंगे, या फिर भी वही देवताओं के शरण में जाएंगे? अपने आप से कुछ बातें करनी होगी हमें, और अपने आप से बातें करते हुए अपने आप में एक चॉइस, एक फैसला करना होगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ये हम सब अर्जुनों को एक सिग्नल है। अब अर्जुन पुनः सवाल पूछते हैं, तो परमात्मा को कौन जान पाते हैं? अब जबकि श्री कृष्ण उनके सामने थे, तो ये सवाल बार बार पूछने का मतलब, जब पुनः पूछा कि कौन जान पाते हैं, तो भगवान कहते हैं जो पुण्य कर्म करने वाले, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो राग द्वेषादि द्वंद के मोह से मुक्त होकर अपने व्रत में दृढ़ रहकर मुझ में अपने मन को एकाग्र करते हैं, वे अंत में संपूर्ण आध्यात्म, दिव्य कर्म, भौतिक जगत, देवता और यज्ञ के विधियों का नियंत्रक मुझे जान जाते हैं। अंत में वो सब कुछ जान जाते हैं, मेरा पूरा अंत प्राप्त कर लेते हैं। और फिर आठवें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग भगवान बताते हैं, और भगवान योग विज्ञान पर बल देते हैं। वे इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी जो अवस्था होती है, वैसी ही उसकी गति होती है। वह हमें ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि का भी ज्ञान देने के साथ साथ व्यक्त और अव्यक्त का अंतर स्पष्ट करते हैं, तथा इस भौतिक जगत से जाने के दो मार्ग के बारे में स्पष्ट करते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर सातवें श्लोक तक अर्जुन के सात प्रश्न है, और इतना सटीक उत्तर दिया हुआ है एक एक लाइन के अंदर। आठवें श्लोक से लेकर सोलहवें श्लोक तक योगयुक्त होकर ध्यान की यथार्थ प्रक्रिया पुनः बताते हैं। सत्रहवें श्लोक से लेकर बाईसवें श्लोक तक ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि तथा परमधाम का वर्णन किया गया है, और तेईसवें श्लोक से लेकर अट्ठाईसवें श्लोक तक शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का विषय लिया गया है। अब अर्जुन के सात प्रश्न है, क्योंकि जब भगवान ने कहा कि वो संपूर्ण आध्यात्म, भौतिक जगत, ये सब जान जाते हैं, पूरा अंत प्राप्त कर लेते हैं, अब अर्जुन कुछ समझने लगा है कि ये बोलने वाली शक्ति भगवत शक्ति है, श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। तो अब वो घुटना टेकते हुए भगवान से प्रश्न करते हैं, और यहां भगवान को एड्रेस जो किया है, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम। और सात प्रश्न उनके जो है, वो शायद हमारे मन के अंदर भी है। पहला प्रश्न है, ब्रह्म क्या है? दूसरा प्रश्न है, आध्यात्म क्या है? तीसरा प्रश्न है, श्रेष्ठ कर्म क्या है? चौथा प्रश्न है, ये भौतिक जगत क्या है? पांचवा प्रश्न है, देवताएं कौन है? छठा प्रश्न है, यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है, और वो मनुष्य शरीर में कैसे है? और सातवां प्रश्न है, मृत्यु के समय आत्मसंयमी आपको कैसे जान सकते हैं? ये सात प्रश्न कहीं न कहीं हमारे मन में भी है, जिसका उत्तर हम खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। अब भगवान ने उसका उत्तर क्या दिया है, कितना स्पष्ट और सटीक एक लाइन के अंदर एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है। आज अगर यही प्रश्न किसी महात्मा से पूछा जाए तो शायद इतना लंबा लेक्चर मिलेगा लेकिन फिर भी समझ नहीं पाएंगे। तो पहला प्रश्न, ब्रह्म क्या है? तो भगवान कहते हैं जो अक्षय है, अविनाशी है और दिव्य तत्व है जिसका विधान कभी नहीं बदलता है वह ब्रह्म महतत्व है। परमेश्वर को इसीलिए कहा जाता है पार ब्रह्म परमेश्वर। पार, ये पांच तत्वों की दुनिया से पार ब्रह्म में निवास करने वाला ईश्वर। तो उस दुनिया के विषय में भगवान स्पष्ट करते हैं अक्षय, जो क्षय नहीं प्राप्त कर। ये भौतिक दुनिया परिवर्तनशील है लेकिन वो ब्रह्म महतत्व अक्षय है, अविनाशी है और दिव्य तत्व है जिसका विधान कभी नहीं बदलता है, जो सदा काल शाश्वत है, वह ब्रह्म महतत्व है। दूसरा प्रश्न, अध्यात्म क्या है? तो बहुत सुंदर सटीक जवाब भगवान देते हैं कि जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के अध्ययन द्वारा माया के अधिपत्य से निकलकर आत्मा के अधिपत्य में यानी स्व के भाव में स्थित होकर उन्नति को प्राप्त करता है वही अध्यात्म है। सिंपल शब्द में अगर मैं कहूं, अध्यात्म अर्थात अध्ययन द्वारा आत्म उन्नति प्राप्त करना। अध्ययन किस चीज का? तो उसको स्पष्ट किया, आत्मा का संपूर्ण ज्ञान, परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान का अध्ययन करना। और ये अध्ययन करने से क्या होगा? तो जो माया की अधीनता में चले गए हैं, माया ने जो बुद्धि का अपहरण कर लिया है, उसके अधिपत्य से निकल आएंगे। यानी माया अर्थात इल्यूजन, अज्ञानता के इल्यूजन से हम बाहर आ जाएंगे और आत्मा के अधिपत्य में यानी अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, स्व के भाव में स्थित हो जाएंगे यानी स्वधर्म में अपने आप को स्थित कर पाएंगे। आज मनुष्य स्वधर्म में क्यों नहीं स्थित कर पाता? क्योंकि माया के अधिपत्य में है। इसीलिए तो जब स्वधर्म के स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो नेचुरल है उन्नति होने लगेगी। तो अध्यात्म माना अध्ययन द्वारा आत्मा के अधिपत्य में स्थित हो जाना और तब उन्नति को प्राप्त करना, यही अध्यात्म है। कितना सिंपल, स्पष्ट और सटीक भगवान बताते हैं। तीसरा कहा, श्रेष्ठ कर्म क्या है? तब भगवान कहते हैं पंच महाभूतों से उत्पन्न देह के अभिमान से या विकारों से परे रहकर जो सकारात्मक कर्म करते हैं वह सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म है। सिंपल, विकारों के वश कर्म करने वाला विकर्म हो गया। तो श्रेष्ठ कर्म किसको कहा? जो विकारों के अधीनता को समाप्त कर देता है और सकारात्मक रूप से कर्म करने लगता है वो सुकर्म या श्रेष्ठ कर्म है। चौथा सवाल, ये भौतिक जगत क्या है? तो भगवान कहते हैं पंच महातत्वों से बना ये संसार जिसमें प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, हर चीज एवरीथिंग इज चेंजिंग, चेंज इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, ये भौतिक जगत है, हर चीज परिवर्तनशील है। मनुष्य शरीर नित्य परिवर्तनशील है, ये भौतिक जगत परिवर्तनशील है, ऋतुएं परिवर्तन होती रहती है, हर चीज परिवर्तन हो रही है। कौन सी चीज है जो शाश्वत है इस जगत में? कोई भी चीज नहीं है। इसीलिए कहा ब्रह्म अक्षय अविनाशी है, लेकिन ये दुनिया, ये दोनों दुनिया को अलग स्पष्ट किया है। पंच महातत्व की ये दुनिया जहां हर चीज परिवर्तनशील है वो ये भौतिक जगत है। यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है और मनुष्य शरीर में कैसे है? तो भगवान कहते हैं देहधारियों में श्रेष्ठ देवताएं हैं। देवताएं भी देहधारी है, तो देहधारियों में श्रेष्ठ देवताओं का शुभ कर्म रूप यज्ञ का अधिष्ठाता मैं ही हूं। यहां बहुत स्पष्ट पुनः हो गया कि देवताएं और परमात्मा दोनों सेपरेट है। और सातवां सवाल, मृत्यु के समय आत्म संयमी परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? तब भगवान कहते हैं जिसने जीवन भर जो अभ्यास किया हो उसे अंत काल में वही स्मृति रहती है, और जो अंत काल में मेरी स्मृति में रहकर देह त्याग करता है वह मेरे सानिध्य में आ जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम हर समय मेरी स्मृति में रहकर ये जीवन का संघर्ष कर, युद्ध कर। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दुर्जय शत्रु है, ये शत्रु परमात्मा स्मृति में रहने नहीं देंगे। ये भी स्पष्ट कह दिया कि ये रहने नहीं देंगे, उसी समय मायावी प्रवृत्ति बाधा के रूप में प्रत्यक्ष उद्भव हो जाती है, इसीलिए परमात्मा स्मृति रहती नहीं है। कई बार आपने देखा होगा, कहीं अपने अंतिम घड़ियों में होते हैं तो कहते चलो गीता पाठ करो, कम से कम कुछ शब्द तो उसके कान में जाए, लेकिन उस समय गीता पाठ भले चल रहा हो एक भी शब्द अंदर जाता नहीं, क्योंकि जीवन भर जिसने जो अभ्यास ही नहीं किया हो तो कैसे वो शब्द कान पर पड़ेंगे। एक बात याद आती है कि एक बार एक बुजुर्ग भाई गांव में रहते थे अपनी पत्नी के साथ, उसके चार बेटे थे, चारों नौकरी के कारण शहर में अलग अलग स्थानों पर थे, बड़े होद्दे पर थे। जब समाचार मिला कि पिता की अंतिम घड़ियां चल रही है आ जाओ, तो चारों पहुंच गए कि भाई पिता की अंतिम घड़ी चल रही है। पिता को तो नीचे लेटा दिया गया था कि कभी भी जा सकते हैं। अभी पिता ने चारों बच्चों को देखा, आंखें खुली थी, चारों बच्चों को देखा और देखने के बाद पता नहीं कुछ इशारा करने लगे, क्योंकि वाचा चली गई थी, तो इशारा करने लगे, दरवाजे के बाहर हाथ दिखाते हुए इशारा करने लगे। लड़कों ने सोचा जरूर पिता ने कोई धन दबाया है गुप्त रूप में, आज दिन तक जिसको किसी के सामने कहा नहीं और लास्ट में हमें ये बताना चाहते हैं, लेकिन वाचा ही चली गई, इसलिए इशारा कर रहे हैं बाहर, हो सकता है खेत में कुछ हो, लेकिन मालूम तो पड़े कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो चारों बेटे डॉक्टर को बुला करके ले आए और कहा कुछ भी करो इसकी वाचा आनी चाहिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं हमें, इशारा कर रहे हैं बार बार। डॉक्टर ने कहा कि भाई अभी उसकी वाचा चली गई है, अभी हम तो क्या कर सकते हैं, कहा नहीं कुछ तो होगा। तो डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन है लेकिन बहुत महंगा है, कहा कितना भी महंगा हो लगाओ, 10,000 का एक इंजेक्शन, लेकिन गारंटी नहीं वाचा आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। तो कहा कोई बात नहीं, 10,000 का इंजेक्शन हो लगाओ, 10,000 का इंजेक्शन मंगाया, लगाया और वाचा आई। तो पिता ने बाहर इशारा करते हुए कहा, वो बकरियां सारा अनाज खा रही है। और आंखें बंद हो गई। अब जिसने जीवन भर बकरियों का, अनाज का, खेत का ये सब करते, चारों बेटे हाथ रखकर कहने लगे, जाते जाते भी 10,000 का फटका मार के गया। भावार्थ ये है, जिसने जीवन भर जो अभ्यास किया वही अंतिम समय भी याद आता है। और इसीलिए जब उसने चारों बेटे को देखा और दरवाजे से बकरियों को देखा कि सारा अनाज, अब जिसने मेहनत करके सारा अनाज इकट्ठा किया और बकरियां खा रही हूं, उसको कैसे देखा जाएगा, तो इशारा मार मार कर रहा था, वो बकरियों को हटाओ, मना वो अनाज खा रही है सारा अनाज। लेकिन बेटों ने समझा कि कुछ बताना चाहते हैं, भले 10,000 का इंजेक्शन लगा दो। अब सोचने की बात है, तो भगवान को जब याद करेंगे तो उसके सानिध्य में सहज जाएंगे, बाकी अंतिम समय जिसकी स्मृति रहेगी तो उसी गति के, उसी से ही गति होगी, तो प्राप्ति क्या होगी, दूसरा जन्म कैसा होगा, ये भी समझ सकते हैं। इसलिए भगवान कहते, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही तो दुर्जय शत्रु है जिसके सामने हमें युद्ध करना है। और अंतिम समय ये मायावी प्रवृत्ति बाधा के रूप में भयंकर उद्भव हो जाती है, प्रत्यक्ष सामने आ जाती है। और जैसे ही ऐसी स्थिति होती है, अब भगवान पुनः अर्जुन को उस विषय पर ले आते हैं कि हे अर्जुन, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। यहां बहुत स्पष्ट शब्द में भगवान कह देते हैं कि हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ, अनादि, सभी का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सभी का आधार मूर्त, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप, अशरीरी हूं, मुझे अपना कोई शरीर नहीं है। और मेरा स्वरूप कैसा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप, अशरीरी हूं। अब अर्जुन को स्पष्ट शब्द में भगवान ने अपना परिचय दे दिया। और उसके बाद भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो ज्ञानी ध्यान करने की पुनः विधि बताते हैं कि अब मेरा स्वरूप स्पष्ट हो गया, तब उस स्वरूप से याद कर तुम मुझे। तो हे अर्जुन, जो ज्ञानी ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करके सर्व इंद्रियों को बाह्य भौतिक जगत से समेट कर मन को योग युक्त और हृदय में अनन्य भाव युक्त होकर भ्रुकुटि के मध्य बुद्धि को आत्म स्वरूप में स्थित कर ओमकार का उच्चारण करते हुए परमात्मा की स्मृति में रहने का निरंतर अभ्यास करते हैं, वह अंत काल में सर्व दुखों से मुक्त होकर दिव्यता और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ये गारंटी है ईश्वर की कि मेरी वास्तविकता से ही मुझे याद करो, तुम मेरे वास्तविक स्वरूप को जानकर, पहचानकर अपने बुद्धि को मुझ में एकाग्र करो और तभी तुम सभी दुखों से मुक्त होकर दिव्यता और परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इसीलिए ध्यान में बैठने की विधि के मन को समेट लो, योग युक्त हृदय में अनन्य भाव ईश्वर के प्रति, इतना अनन्य भाव रख के भ्रुकुटि के मध्य में बुद्धि को आत्म स्वरूप में स्थित ओमकार का उच्चारण कर। ओम का मतलब है वो ही मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। ओम माना मैं कौन, मैं आत्मा हूं, तो उस आत्म स्वरूप में स्थित होने का सहज तरीका अगर है तो ओम का उच्चारण करते ही आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और तब परमात्मा को याद करना भी सहज हो जाता है। और जब ये अभ्यास निरंतर करेंगे तब अंत काल में सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये योग अभ्यास की विधि है, ये योग अभ्यास की विधि है। फिर ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि के विषय में भगवान बताते हैं कि सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों का एक कल्प होता है। बहुत सुंदर स्पष्ट रीति से ये ज्ञान दिया। चारों युगों का एक कल्प होता है जिसमें सत्युग और त्रेता युग ये ब्रह्मा का दिन है, तथा द्वापर युग और कलयुग ये ब्रह्मा की रात्रि है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ में यानी सत्युग के बिगिनिंग में आत्माएं अव्यक्त अवस्था से यानी उस ब्रह्म महतत्व से जहां यह व्यक्त स्वरूप नहीं है, सिर्फ वो ज्योति स्वरूप में है, तो उस अव्यक्त अवस्था से व्यक्त प्रकृति का आधार लेती है। आत्मा नीचे आती है और पंच तत्व की ये दुनिया में प्रकृति का आधार लेती है, शरीर का आधार लेती है। और जब ब्रह्मा की रात्रि का भी अंत होता है तो सभी आत्माएं व्यक्त से अव्यक्त अवस्था में चली जाती है वापस। यानी जब कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस में है तब तक जा नहीं सकते हैं। इसीलिए कलयुग के अंदर सब बुराइयां हैं, लेकिन कलयुग को एक वरदान भी है। कलयुग को ही ये वरदान है। कौन सा वरदान? तो ईश्वर का अवतरण भी इसी युग में होता है, और तभी ईश्वर सत्य मार्ग स्पष्ट करता है कि कैसे वापस इस प्रकृति के आधार को छोड़ करके तुम वापस घर आ सकते हो। कई बार ये सवाल लोगों के मन में होता है, आखिर भगवान ने ये दुनिया रची ही क्यों? ऊपर ही बैठे रहते थे हम, नीचे आए ही क्यों? क्या उद्देश्य है? ये संसार में आने का उद्देश्य क्या है? देखो, आपके घर में बच्चा हो और आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो, और उस बिल्डिंग के नीचे एक प्लेग्राउंड है। वैकेशन का टाइम है, सारे बच्चे उस बिल्डिंग में के नीचे आकर उस प्लेग्राउंड में खेलते हैं। मानो आप भी उस बिल्डिंग में रह रहे हो और आपका भी बच्चा है, वो कहता है मुझे भी नीचे जाना है, और आप उसको मना कर दो कि बेटा मुझे तुझसे इतना प्यार है, तुम ऊपर ही बैठे रहो, तेरे पास इतने वीडियो गेम्स हैं, वो खेलो या मेरे साथ बात करो। बच्चा मान जाएगा? मान जाएगा? वो क्या कहेगा, अरे सारा दिन आपके साथ क्या बातें करेंगे, मुझे तो नीचे जाना है। उसको कहो इतनी वीडियो गेम्स है तेरे पास, चल हम दोनों मिलके खेलते हैं। तो क्या कहते, मेरे को आपसे नहीं खेलना है, मैं तो नीचे जाना, अपने दोस्तों के साथ खेलना है। क्योंकि उस समय उसको जो लाइवली गेम नीचे चल रही है वो ज्यादा आकर्षित कर रही है। ये वीडियो गेम्स में वो मजा नहीं जो लाइव खेलने में है। जिद करता है। आप उस बच्चे को समझाते हैं कि बेटा देखो, नीचे जो खेल चल रहा है ना, बड़ा रफ खेल है, चीटिंग भी होती है, किसी ने चीटिंग किया, तुम्हें धोखा दिया, धक्का दिया, हार जाएगा। तो क्या कहता है, क्या कहेगा? अरे हार गया तो हार गया, उसमें क्या है, दूसरे दिन जीत जाऊंगा, कहता है कि नहीं कहता है? लेकिन मुझे जाना है, जाना है। ठीक है आप उसको परमिशन दो, भले जाओ, लेकिन संभालना, फिर रोना नहीं, हार गया तो का कोई बात नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। नीचे गया, खेल में इन्वॉल्व हुआ, बहुत मजे से खेलने लगा। शुरू में तो खेल बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चीटिंग बढ़ने लगी। और जैसे जैसे चीटिंग बढ़ती गई, किसी ने धक्का दिया, गिरा दिया, चोट लगी, रोने लगा। किसी ने आकर के आपको बताया कि आपका बच्चा रो रहा है, उसको चोट लगी है, क्या करेंगे आप, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे, और जाकर के बच्चे को कहेंगे अच्छा चलो बहुत खेल लिया, अब चलो। अब जब तक दूसरे खेल रहे हैं, वो बच्चा रो भी रहा है, लेकिन वहीं देखना है, आएगा नहीं। तो उस समय पिता क्या करेगा, सारे बच्चों को कहेगा देखो सबने बहुत खेला, अब सब अपने अपने घर जाओ, क्योंकि मालूम है जब सब जाएगा तो खुद का बच्चा भी आएगा, नहीं तो तब तक ये भी आने वाला नहीं है। सारे बच्चों को आप भेजते हैं, खुद के बच्चों को भी लेकर के आते हैं कि चलो अब घर में चलो, साफ स्वच्छ करके मलम पट्टी लगाई, खाना पीना दिया, अच्छा सो जाओ, सो गए। दूसरे दिन जैसे ही वो खेल चालू होगा, जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक इसी तरह ऊपर इतनी शांति थी परम धाम में, उस ब्रह्म महातत्व में, अव्यक्त स्वरूप में हम सभी बैठे थे, बड़े मजे से बैठे थे, परम आनंद का स्वरूप था। लेकिन जैसे देखा कि कुछ आत्माएं धीरे धीरे नीचे उतर रही है, अरे खेल करने में तो आनंद आएगा, तो हमने भी परमात्मा से क्या कहा, हमें भी नीचे जाना है। भगवान कहते हैं अरे तेरे से बहुत प्यार है, तू ऊपर ही बैठा रे। हमने क्या कहा, नहीं नहीं नीचे जाना है, ये सारे जा रहे हैं मेरे दोस्त लोग, मैं भी जाना चाहता हूं। हमें समझाया गया था नीचे जो खेल है ना थोड़ा रफ है, संभालना, धक्का मिलेगा, धोखा मिलेगा, चीटिंग होगी, चोटें लगेगी, दिल की चोटें लगेगी, बहुत कुछ होगा। तो हमने क्या कहा, ईश्वर को भी क्या कहा, कोई बात नहीं, लगी तो लगी, उसमें क्या है, ठीक है जाओ फिर। अरे नहीं तो इतनी शांति है, ऊपर बैठे रहो मेरे बाजू में, मेरे साथ बात करो। तो हमने क्या कहा, सारा दिन आपके साथ क्या बात करेंगे, ठीक है जाओ फिर नीचे। नीचे आए, खेल में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। सत्युग और त्रेता युग ब्रह्मा का दिन जब साथ था, तब तक तो बहुत अच्छा खेल चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे द्वापर और कलयुग आया, ब्रह्मा की शाम हुई, रात्रि हुई, तो चीटिंग भी इतनी बढ़ती गई। किसी ने धक्का दिया, धोखा दिया, चोटे दिया, दिल की चोट, जब बहुत चोटे खा ली तो हमने भी रोना चालू किया, हे प्रभु अब तो मोक्ष मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अब तो मोक्ष मिल जाए। तो भगवान भी क्या करेगा, आएगा, आएगा और कहता अच्छा चलो अब सब चलो, अब सबको चलना होगा, कोई भी नीचे नहीं रहेगा। इसीलिए अब जो सृष्टि पर मौत होगी ना, होलसेल में ही होगी, अब एक एक करके नहीं जाएंगे, अब एक बम गिरेगा और एक साथ में लाखों आत्माओं का उद्धार होगा। महाविनाश, महाविनाश होगा, क्योंकि सबको जाना है ऊपर वापस घर। रात्रि हो गई, अब तो थोड़ा रेस्ट करो, कल फिर खेलना चाहे तो। तो इसीलिए जैसे ही ब्रह्मा की रात्रि हुई, रात्रि के बाद फिर से व्यक्त स्वरूप को त्याग करके, अव्यक्त होकर के उस धाम में वापस चले जाएंगे। रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा का दिन आरंभ होगा, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, कोई बोलता ही नहीं, नहीं आना है, आएंगे फिर खेलेंगे। इसलिए आना और जाना ये नित्य प्रक्रिया है, आना भी है जाना भी है फिर आना है। तो परमानेंट मोक्ष किसी को चाहिए? चाहिए, भगवान ऑफर कर रहा है, लेकिन फिर ऊपर बैठेंगे तो ये खेल का मजा नहीं आएगा। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ऊपर बैठेंगे नहीं? तो परमानेंट मोक्ष किसी को चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। आना और जाना जब भगवान खुद भी आता है, जब खुद ही आता है, वो भी परमानेंट मोक्ष में नहीं रहता है, तो बाकी कौन रहेगा? इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि का ये जो खेल चलता है, ये नित्य चलता रहता है। सुबह दोपहर शाम रात्रि, कोई भी चक्र चार भाग में बटा हुआ होता है। दिन और रात का चक्र भी चार भागों में, सुबह दोपहर शाम रात्रि। सतयुग सुबह है, त्रेता दोपहर है, द्वापर शाम है और कलयुग रात्रि है। रात्रि के बाद तो घर में जाना होगा कि नहीं जाना होगा, इसीलिए सारा दिन खेल लिया, अब घर जाने का समय है, क्योंकि अब सब थक चुके हैं। इसीलिए ईश्वर को भी आना ही है। रास्ता घर का भूल गए, ज्ञान बुद्धि के अंदर नहीं रहा, माया ने वो भी अपहरण कर लिया, तो इसीलिए भगवान आकर ज्ञान देते हैं, और समझदार को इशारा ही काफी होता है और वो अपनी तैयारी आरंभ कर देता है कि जाना है तो प्यार से जाए या तो मार से जाए, कैसे जाना है वो हमें डिसाइड करना होगा। और ये पंच तत्व की दुनिया जो नित्य परिवर्तनशील है, यहां से परे एक दूसरा लोक है, अव्यक्त लोक है, इसके अतिरिक्त एक अव्यक्त शाश्वत प्रकृति है जो सभी पंच महाभूतों के नाश होने पर भी नाश नहीं होती है और व्यक्त अव्यक्त अवस्था से श्रेष्ठ है, अविनाशी है और सबसे परे है। वही मेरा परम धाम है जहां मैं विराजमान हूं। अब कहां भगवान ने कहा मैं सर्वव्यापी हूं? भगवान यही तो कहा कि मेरा धाम कौन सा है, परम धाम है। भगवान ने कहां ये कहा कि मैं सर्वव्यापी हूं, कण कण में हूं? कहां कहा? गीता में तो नहीं कहा। मैं परम धाम का वासी हूं जहां तुम आत्माएं भी रहती हो, लेकिन फिर हर एक अपने अपने समय अनुसार नीचे उतरते जाते हैं। जो पहले जागता है पहले आता है, जो बाद में थोड़ा देरी से जागता है तो देरी से आता है, इसीलिए तो पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। ये आत्माएं कहां से आई? इतनी जो 700 करोड़ से अधिक आत्माएं हो गई वो कहां से आई? कुछ ऊपर बैठी थी, धीरे धीरे आती जा रही है, कुछ सतयुग में आई, कुछ त्रेता में आई, जो है वो तो है ही है, यहां चोला बदल बदल कर खेल कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 कलयुग में बहुत सारी आत्माएं उतर आई, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ता गया। लेकिन परमात्मा कहते मैं तो परम धाम में ही रहता हूं, मैं नहीं आता हूं, मैं सिर्फ एक बार सबको लेने के लिए ही आता हूं कि वापस घर का रास्ता बताना, ये तो मेरा ही काम है, आप लोग तो भूल गए, तो मैं आता हूं अधर्म के समय पर, और अधर्म के समय पर आकर उस धाम का पुनः रास्ता बताता हूं। और फिर इस भौतिक जगत से जाने के दो मार्ग के बारे में स्पष्ट करता है, एक प्रकाश का मार्ग है, दूसरा अंधकार का मार्ग है, शुक्ल मार्ग है, कृष्ण मार्ग है। तो प्रकाश के मार्ग के बारे में भगवान स्पष्टीकरण करते हैं कि प्रकाश के मार्ग से कौन जाता है। तो कहा जो मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है वह ज्ञान युक्त कर्म मार्ग अर्थात जिसमें यज्ञ सेवा की अग्नि जलती हो, बुद्धि की प्रभा सूर्य के समान चमकती हो, हृदय आकाश में आसक्ति के बादल न हो और भावनाओं का पूर्ण उजाला हो, शुभ भावनाओं से संपन्न हो, वो प्रकाश के मार्ग से जाता है। ऐसे दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या सूर्य जब उत्तरायण में रहता है तब प्राण तन से निकले वह आत्मा श्रेष्ठ गति को प्राप्त होती है। प्रकाश का मार्ग, सिंपल शब्द में अगर मैं उदाहरण देकर के आपको कहूं कि मान लो कि आपके घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत आज्ञाकारी है और दूसरा बच्चा तूफानी है। अब जो आज्ञाकारी है स्कूल से आता है अपना होमवर्क कर देता है, फिर खेलने जाता है, खेल भी करता है और फिर आकर के रात को सो करके सुबह जैसे ही होती है तैयार हो करके माँ जब उठाने आती है दोनों बच्चों को तैयार हो जाता है, अपने आप तैयार होकर रेडी हो जाता है। लेकिन जो तूफानी बच्चा है स्कूल से आया अपना बस्ता फेंका खेलने में चला गया होमवर्क करना भूल गया, अब जब होमवर्क ही नहीं किया है सुबह में माँ जब उठाती है कि बेटा उठो, अब उसको मालूम है याद आता है मैंने होमवर्क तो किया ही नहीं, अब स्कूल जाऊंगा तो पनिशमेंट मिलेगी, तो वो क्या कहता है, क्या कहता है माँ को, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। अब माँ जानती है कि एक दिन अगर उसको ओके किया तो रोज कोई ना कोई बहाना करेगा। माँ क्या कहती, देखो बेटा स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए स्कूल तो जाना पड़ेगा। तो बच्चा क्या कहता है, अरे मुझे पेट में दुख रहा है, मेरे पेट में दुखता है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। माँ कहती है अच्छा डॉक्टर को बुला लेते एक इंजेक्शन लगा देंगे ठीक हो जाएगा। अब इंजेक्शन के डर नहीं, पेट में नहीं दुख लेकिन मुझे स्कूल नहीं जाना है। अब माँ उसको कहती है अच्छा बेटा आज स्कूल जाएगा ना तो तेरे मन पसंद चीज खाने में बनाएंगे। कहा नहीं मुझे मन पसंद चीज भी नहीं खानी लेकिन स्कूल नहीं जाना है, जिद पर आ गया। अच्छा नहा तो ले, कहता नहीं नहाना भी नहीं है, नाना भी नहीं क्योंकि उसको मालूम है नाऊंगा तो जाना पड़ेगा, नाना भी नहीं लेकिन स्कूल नहीं जाना है। अब लालच दिया सब कुछ दिया उसके बाद भी वो बच्चा नहीं मानेगा तो लास्ट में मां क्या करेगी, दो थप्पड़ मार कर खींच करके ले जाएगी, बाथरूम में नहलाएगी और नहला करके जाना तो पड़ेगा। अब दोनों बच्चे स्कूल जा रहे, एक हंसता हुआ जा रहा है एक रोता हुआ जा रहा है। जब पिता छोड़ने जाते हैं तो पिता उसके क्लास टीचर को कहते हैं आज जरा उसको मार पड़ी है आप संभाल लेना, कहते कोई बात नहीं। अब बच्चा जब रो करके आता है तो थक जाता है, रो करके थक जाता है तो स्कूल में जाएगा बेंच पर सिर रख करके सो जाएगा, थक गया सो गया। टीचर भी क्या कहती है, कोई बच्चा उसके पास नहीं जाएगा, कोई बच्चा उसके रहने दो उसको ऐसे ही। सारा दिन इतना मूड ऑफ उसका रहा, उसके दोस्त रिसेस में आए उसके पास, चलो खेलने, नहीं खेलना है नहीं खेलना है, इतना उदास अपसेट है, मार जो पड़ी है। शाम को घर आता है तो भी इतना बड़ा चेहरा उसका होता है, किसी से बात नहीं करना, माँ उसको मनाने का प्रयत्न करती है तो भी बात नहीं करता है। फिर उसके दोस्त आते, अरे क्या ये सुबह से मुंह बना के रखा है चल खेलने के, उसको घसीट के ले जाते हैं खेलने के और खेल में सब कुछ भूल जाता है, नॉर्मल हो जाता है। भगवान के भी दो प्रकार के बच्चे हैं, एक आज्ञाकारी है, दूसरे थोड़े तूफानी है। अपने आप को देखो, मैं कौन सी कैटेगरी में हूं? जो आज्ञाकारी है तो भगवान जब आते हैं और कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, आत्म शुद्धिकरण करो, जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण करो, जो आज्ञाकारी है वो तो शुद्धिकरण करने लगते हैं। और इसीलिए जब यज्ञ सेवा की अग्नि जलती हो जिससे शुद्धिकरण हो रहा, बुद्धि की प्रभा ज्ञान से चमक रही हो, हृदय आकाश में आसक्ति के बादल न हो, कोई इच्छा आसक्ति तृष्णा ये नहीं है, और भावनाओं का पूर्ण उजाला, ये आज्ञाकारी बच्चों के लक्षण है। जब आज्ञाकारी है, अपने आप का शुद्धिकरण कर लिया है, क्योंकि उस धाम में जब जाना है परमात्मा के साथ तो अशुद्ध आत्माएं नहीं जा सकती है, शुद्ध होना ही पड़ेगा,